ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर उस रीति से ओम शांति का उच्चारण करेंगे जैसा यज्ञ में भी शुरू में किया जाता था। अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे, फिर दूसरी श्वास अंदर लेंगे और उसे निकालते हुए शांति का उच्चारण करेंगे। जहां भी जीत शब्द आता है अर्थात विजय, विक्ट्री, सफलता, तो इस शब्द के साथ ही साथ खुशी, उमंग, उल्लास और आनंद समाया होता है। जीवन में जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त की जाती है तो जीवन और ही उमंग उल्लास से भर जाता है। इसलिए जब भी हम कोई भी बाबा की मुरली में जीत शब्द सुनते हैं तो उसके साथ साथ जीवन में नई प्रेरणाएं भी जागृत होती है। अभी तक तो अक्सर करके हम लोग सुनते आए हैं मन जीते जगत जीत, दुनिया में भी कहते हैं और बाबा ने भी कहा है माया जीते जगत जीत, माया को जीत। लेकिन साथ ही साथ प्रकृति जीते जगत जीत, क्योंकि इस शब्द के अंदर सब कुछ आ जाता है। प्रकृति को जीतने की जहां भी बात होती है तो प्रकृति शब्द के दो अर्थ बाबा ने बताए, मालूम है ना सबको। एक तो प्रकृति शब्द जो पांच तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर है जो चारों तरफ बड़े विशाल रूप में ये पांच तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश ये जो फैले हुए हैं, एक ये पांच तत्वों के लिए प्रकृति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा है प्रकृति अर्थात मानव स्वभाव। अक्सर कह देते हैं भाई मेरी प्रकृति ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मानो तेज बोलने का अथवा जो भी संस्कार होता है। तो प्रकृति एक है आंतरिक प्रकृति, ये सब है बाह्य प्रकृति। इसलिए इस संसार को भी क्या कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में संसार को कहा गया है कि ये संसार पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात ये शरीर पांच तत्वों का बना। तो अगर हद के दृष्टिकोण से लेते हैं तो यह पुरुष और प्रकृति का खेल है, और अगर बेहद के और विशाल दृष्टिकोण से लिया जाए तो ये पुरुष और प्रकृति के खेल में परम पुरुष परमात्मा शिव बाबा और प्रकृति यानी कि ये बाहर फैले हुए पांच तत्व इसका खेल है। इसीलिए जब प्रकृति जीत कहा जाए तो प्रकृति का मतलब दोनों ही प्रकृति को जीतना है, ये आंतरिक प्रकृति यानी कि मानव स्वभाव पुराने संस्कार पुरानी जितनी भी बातें हैं उन सब के ऊपर विजय प्राप्त करके और फिर प्रकृति जीत बनना और साथ साथ बाह्य ये प्रकृति ये जो पांच तत्व हैं इनके ऊपर विजय प्राप्त करना ये एक बहुत बड़ी बात है। कहते हैं रावण ने भी इन तत्वों को अपने इन पर विजय प्राप्त की थी अपने चारपाई के चार खूंटे से ये तत्व जैसे बांधे हुए थे जल अग्नि वायु पृथ्वी आदि आदि। तो इसका भाव क्या है इनके ऊपर विजय प्राप्त की आज देखें तो विज्ञान ने भी इन पर विजय प्राप्त की हुई है। जब चाहो अग्नि जला लो अग्नि तत्व पर नल खोल दो जल तत्व आ गया पंखा खोल दो ऐसी वायु तत्व आ गया आदि आदि। लेकिन यह तो साधन है हम आत्माएं बाबा हमें इतना अपनी स्वस्थिति में स्थित करना चाहता है इतना शक्तिशाली हमारी स्वस्थिति हो जाए कि हमारे संकल्प मात्र से ही ये तत्व हमारे ऑर्डर पर चले। गायन भी है पुराने जमाने का कई चीजों का तानसेन संगीत ऐसा निकालते थे कि जो सुर निकालते थे तो दीपक जल जाया करते थे यानी कि कोई और उसकी बात नहीं बस अपने मन के संकल्प उनके आधार पर संगीत के माध्यम से दीपक मल्हार राग निकालते थे तो वर्षा होने लगती थी आदि आदि। तो इसका भाव क्या है हम प्रकृति के ऊपर भी इतना जीत प्राप्त कर लें कि जैसा हम संकल्प करें वैसा वो संकल्प सिद्ध हो जाए ये है वास्तव में हमारी अंतिम स्थिति। और इसीलिए गायन भी है क्या गायन है हमारे सारा पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं हमारे पूरे पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है। जब से हम बच्चे ज्ञान में आए अलग अलग समय पर ज्ञान में आए हैं तो हम सबका लक्ष्य है कि जब हमारी अंतिम श्वास हो तो वो श्वास पर हमारा पूरा अधिकार हो उस समय कोई भी बाहर की स्मृति न हो। और इसीलिए गायन है अंतमते सोगति का गायन अंत में जैसी हमारी मति होती है बुद्धि होती है विचार होते हैं उसी के आधार पर ही हमारी बस आगे आने वाले सभी जन्मों की गति सदगति होती है। लौकिक दुनिया में भी तो ऐसे ही मिलता जुलता नियम है ना जो लोग सर्विस करते हैं नौकरी करते हैं मालूम है पूरा जितने साल भी नौकरी की 20, 25, 30, 35 जितना भी साल लेकिन आखिरी दिन पर लास्ट डे पर जो उनकी सैलरी है तनख्वाह है उसके आधार पर ही सारा आगे आने वाला रिटायरमेंट बेनिफिट वो सब कैलकुलेट होता है, चाहे ग्रेजुटी हो पेंशन हो, तो जो लास्ट में, इसीलिए अंतिम लास्ट पे सर्टिफिकेट बोला जाता है एलपीजी, तो उसके आधार पर ही सब कुछ आगे आने वाले समय का पूरा कैलकुलेशन होता है। ऐसे ही हमने जितने समय भी पुरुषार्थ किया, जितना समय ज्ञान में रहे, 10, 20, 30, 50, 80, जितने भी साल, लेकिन अंत में जो हमारा श्वास जब निकले तो उस समय हमारी स्थिति कैसी है, उसके आधार पर ही सारा आगे आने वाले जन्मों का, सतयुग त्रेता का, पूरा कल्प का आधार जो है वो ही अंतिम श्वास है। इसीलिए हमें ये देखना है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा अंत में जब श्वास निकले तो कहीं और बुद्धि योग न हो, कोई व्यक्ति वस्तु वैभव आदि कोई भी चीज हो, किसी में भी न हो, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। और इसमें ऐसी स्थिति लाने में सबसे सहायक हमें कौन होता है, कोई भी अगर जीवन में रोल मॉडल होता है जिसको देखा हुआ हो सुना हुआ हो तो वैसा बनना बड़ा सहज हो जाता है। लौकिक दुनिया में भी कोई व्यक्ति होते हैं और मानो कोई हीरो बनना चाहता है फिल्म का, तो कोई रोल मॉडल होता है उसके जीवन को कॉपी करता है तो सहज हो जाता है, क्योंकि फिजिकली भौतिक रीति से उसका जीवन सामने होता है। आत्मा में संस्कार तो वैसे ही होते हैं। हमें एक पुरानी बहुत ध्यान की बात याद आती है, हम शुरू शुरू में जब ज्ञान में 1962-63 में आए थे तो संदेशी ध्यान में गई थी, गुरुवार को जैसे जाते हैं, उस समय तो हर सेंटर पर ही वो लगता था तो संदेशियां होती थी, और वो संदेशी ध्यान में गई तो उसने आके एक समाचार सुनाया, 1962 की बात है, हम नए नए ही तब ज्ञान में आए थे, तो उसने जाके बताया कि आज बाबा ने ऊपर मुझे वतन में बताया कि एक बहुत बड़ा चबूतरा जैसा था, चबूतरा बना हुआ, और उसके पास एक 13-14 साल का बच्चा वहां पर बैठा हुआ था और बड़े बस श्रद्धा से कह रहा था कि वहां पर वो बार बार उसकी आंखों से आंसू भी आते थे और मन के अंदर कुछ प्रार्थना करता था। तो बाबा ने संदेशी से पूछा, बच्ची ये देखा, ये क्या समझा? तो बाबा दृश्य बताया, तो बाबा ने फिर उसका रहस्य बताया कि देखो ये बच्चा जो है, ये जो चबूतरा है, ये दिल्ली की जो राजघाट है, गांधी जी की समाधि, ये वो है, और ये बच्चा आके बस ये प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं भी गांधी जी की तरह बन सकूं, उनके बताए रास्ते पर चल सकूं, सत्य और अहिंसा ये मेरे जीवन का भी एक अंग बन जाए। बहुत श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु मुझे ऐसा बल दो, शक्ति दो, और मैं ऐसा बन सकूं। और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं और बार बार प्रभु से ये शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो बाबा ने कहा, बच्ची इसका और रहस्य समझा? तो फिर बाबा ने बताया कि देखो, इस बच्चे को ये नहीं मालूम कि ये स्वयं गांधी की आत्मा है, और वो संस्कार लेकर के गई है ये आत्मा, और इसीलिए बार बार ये वो ही स्मरण कर रहा है, ये संस्कार इसके अंदर है, क्योंकि आत्मा तो संस्कार लेके जाती है और गांधी बापू का जीवन तो सबको मालूम है, तो वो संस्कार लेके गई है और यही इच्छा बार बार प्रकट कर रहे हैं। और बाबा ने बताया कि इसका जन्म भी दिल्ली के पास कहीं, बाबा ने कुछ उस वक्त बताया था, 40-50 किलोमीटर दूर कहीं है गांव में, लेकिन जब जब ये दिल्ली आता है तो और इसके साथी तो घूमने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन ये गांधी जी की समाधि पर ही आता है। बार बार ये समाधि उसे खींचती है, क्योंकि इसे ये नहीं मालूम कि ये उसी की ही यादगार है। तो भाव क्या है कि आत्मा में संस्कार तो हैं, हमें पुनः बस थोड़ा सा उसे जागृत करना है और फिर वो संस्कार भी अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, प्रकृति जीत आत्मा है, और इसलिए हमें अब ये करना है कि किस तरीके से हमारे अंतिम श्वास भी इस आधार पर ही हो जैसा हम चाहते हैं। कहां व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, कई बार हम सुनते हैं लौकिक से कि भाई दुनिया में कि भाई उसका फलाने का श्वास अटका हुआ है जैसे, और जिसकी प्रति इच्छा होती है और जैसे उस व्यक्ति को देखता है, कोई उसकी इच्छा होती है, कोई बच्चे के देखने की, पति पत्नी या कोई भी साधन जब उसे नसीब कराया जाता है, तो सहज रीति से फिर वो आत्मा चली जाती है। तो हमें ये देखना है कि अंत में जब हमारा श्वास निकले तो कहीं पर भी बुद्धि योग न हो, अक्सर करके अंत में वही बुद्धि जाती है जहाँ पर कोई व्यक्ति का बहुत स्नेह हो, प्यार हो, जहाँ पर कोई पेंडिंग काम हो, आधा किया हुआ काम हो, पूरा करना बाकी हो, वो ही बात याद आती है, अरे ये करना था मुझे, ये नहीं कर सका। तो एक तो पहली बात हम ये करें, हम ऐसा बने, ऐसा पुरुषार्थ हो जो महाभारत में गायन है, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। ये देखो ऐसा कैसे होगा, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े जिससे कि कोई भी बात में कहीं अटक ना हो। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा के साथ हम काफी 6-7 साल रहे, 62 से लेकर 69 तक अनेक बार मिलना हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये रहा कि अंतिम दो दिन 17 और 18 जनवरी 1969 को मधुबन में बाबा के सम्मुख रहना हुआ, और बाबा की जब कर्मातीत अवस्था हुई, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो हमने वो सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा, और उसी को ही हम खास शेयर करना चाहते हैं कि बाबा ने कैसे मन जीते, जगत जीत, प्रकृति जीत, और सब करते हुए कैसे अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। हम बच्चे भी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन ब्रह्मचारी हैं। अब क्या बनना है, बाबा ने कहा ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी तो हैं, पवित्र हैं, लेकिन ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए हमें भी उस स्थिति को प्राप्त करना है जो बाबा ने करी। तो वो स्थिति को जब हम शेयर करें तो अपने साथ हम चेक करते चले कि कितना अंतर है अभी, जिससे कि हम उस अंतर को पूरा भर सकें और उस स्थिति को प्राप्त कर सकें। तो बाबा से पहले जब हम लोग मिलते थे ब्रह्मा बाबा से, तो बाबा काफी समय देते थे, बात करते थे, हालचाल पूछते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था बाबा अंतर्मुखी बहुत होते जा रहे थे। बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा एक दो बात सुन करके ही बाबा कहते थे बच्चे, बाबा समझ गया। बस हम सोचते थे बाबा अभी तो हमने बात शुरू ही की है, जरा सा ही दो चार लाइन बताई आपको, नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया। और फिर बाबा उस बात को सुनकर कोई प्रश्न होता था तो उसका समाधान कर देते थे और उसकी गाइडलाइन दे दिया करते थे। तो इस तरह धीरे 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 सारा बाबा बिल्कुल एकदम इतना समेटते जा रहे थे। तो जितना फैला हुआ होगा उतना बुद्धि बहुत ज्यादा जाएगी। समेटने का ये मतलब नहीं, यज्ञ तो बढ़ता ही जा रहा था लेकिन बुद्धि को उससे समेटते जा रहे थे। पावर ऑफ डेलीगेशन, यानी कि बाबा हर बच्चे पर विश्वास रख के और वो उनके कार्य सेवा का उनको सौंपते जा रहे थे। ऐसे ही हमें ये देखना है कि हमारा भी कोई काम ऐसा न हो जो अंत समय हमें खींचे पेंडिंग, और अंत समय तो हमें मालूम नहीं है कौन सा कब आ जाएगा। तो कोई भी काम अगर रहा हुआ हो उसको हम पूरा करें। मानो विल करनी है, हाँ अंत में विल करके जाते है ना, तो कोई भी हो तो वो काम निपटा दे पूरा करके। कोई भी घर का कार्य है जहाँ बुद्धि जाने की संभावना है, वो बुद्धि जाने की संभावना, उन सब कार्यों को हम इस तरह कर दें डेलीगेट की अंत में वो चीज हमें खींचे नहीं, अरे ये करना बाकी था। कई बार ऐसा होता है हमारे भाई बहन शरीर छोड़ते हैं तो यहाँ पर उनका भोग लगता है, उनके संबंधी भी आते हैं। पहले तो ये काफी होता था, वो आत्माएं आती थी उनका आवाहन करते थे, भोग स्वीकार भी करते थे यहाँ पर, और काफी ये बताते थे कि अरे मुझे ये करना था, मेरे मन में ये संकल्प था कि ये ईश्वरीय कार्य करना बाकी है, यहाँ मुझे तन मन धन या ये लगाना है। मैं सोचता ही रह गया, इतनी देर में मेरा शरीर छूट गया और अब तो मैं क्या करूं। तो अक्सर करके ऐसा होता है कि कोई कार्य पेंडिंग रह जाते हैं तो वो अपनी तरफ खींच लेंगे तो वो तो हमें संपूर्ण बनने नहीं देंगे। उसकी स्मृति में अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो उन कार्यों को पूरा करने के लिए फिर हमें यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो ये अंत मत सो गति तो हुई नहीं, सदगति तो हुई नहीं। तो इस कारण से जो भी हमारे रहे हुए कार्य वगैरह हैं, एक तो उनको निपटाते जाए। घर में है कोई सास बहू की बात है, बच्चों की बात, उन कार्यों को निपटाते हुए एक तो आगे बढ़ते चले। दूसरी बात, बाबा का हमने देखा कि कई बार मिले थे, लेकिन अंतिम दो दिन का मैं खास वर्णन करना चाहता हूँ। जो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी तो उस समय कैसे बाबा प्रकृति जीत भी बन गए थे, मन जीते ये सब तो था हुआ। क्योंकि 17 जनवरी की हम सुबह यहाँ पहुंच गए, बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, बाबा ने बुला लिया और 17 का दिन पूरा और 18 का दिन बाबा के साथ साथ रहने का मौका मिला। तो उसमें हमने देखा कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे और बस बाबा से ये पूछेंगे हमेशा की तरह, ये पुरुषार्थ चल रहा है, ये सेवा का काम चल रहा है, ऐसा बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा थोड़ा दृष्टि दी यूं, और फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि बाबा मन के अंदर प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी कर देते थे। ये तो एक स्थिति है मन जीते जगत जीत की। क्यों? क्योंकि दूसरे के मन का हाल वो ही जान सकता है जिसने अपने मन को जीता होगा, नहीं तो अपने मन को ही अगर पूरा जीता नहीं होगा तो हमारे अपने संकल्प जो होंगे वो जो व्यक्ति सम्मुख आया है उसके संकल्पों के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो जब हमें उसके एग्जैक्ट संकल्प ही नहीं मालूम होंगे तो हम उसका समाधान भी कैसे कर सकेंगे। इसलिए अपने मन को, और इसीलिए कहा है ये मन की बात कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मन के अपने विचारों के ऊपर, और इसीलिए बाबा कहता है इतना विचारों के ऊपर हमारा नियंत्रण हो। थोड़े टाइम पहले एक बार गुलजार दादी जी ने संदेश दिया, बाबा ने कहा बाबा आज बच्चों को सर्टिफिकेट देता है किस चीज का, कि बच्चे जो हैं अधिकतर बच्चे तो वो उनको विकारी संकल्प तो नहीं चलते, विकारों के ऊपर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है काफी हद तक, तो ये सर्टिफिकेट बाबा देता है, लेकिन अभी बच्चों को व्यर्थ संकल्प अभी भी बहुत आते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों के ऊपर अब विजय प्राप्त करनी अभी बच्चों को बाकी है। तो इनको ऐसा ही समझें बच्चे, व्यर्थ संकल्प जैसे कि ये विकारी संकल्प, उनको जैसे उन पर विजय प्राप्त कर ली तो अभी ये व्यर्थ संकल्प कोई व्यक्ति के कारण, संबंध के कारण, परिस्थिति के कारण कुछ आते हैं, अब उन पर विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा उन 17 जनवरी 18 जनवरी को हमने देखा तो बाबा से लगभग 5-6 बार मिलना हुआ, क्योंकि यहाँ पर बाहर की पार्टियां थी नहीं, 1969 जनवरी की बात है, तो बहुत, तो इसलिए कई बार बाबा से मिलना हुआ, और बाबा के पास झोपड़ी में, कमरे में, मधुबन में चलते चलते फिरते इस रीति से, लेकिन हर बार का ये अनुभव हुआ कि एक तो बाबा की ऐसी स्थिति बन गई थी कर्मा, तो हम भी अपने को ये चेक करते जाएं कि हमारे मैं भी कितना मन जीते जगत जीत बनता जा रहा हूं। दूसरा बाबा का देखा, हाँ बाबा ने 18 जनवरी को और 17 को मुरली चलाई थी। 18 जनवरी की सुबह बाबा क्लास कराने आए हिस्ट्री हॉल में, लेकिन उस दिन बाबा ने सिर्फ योग ही कराया, मुरली नहीं चलाई, सब बच्चों के अंदर बहुत शक्ति भरी और उसके बाद बाबा बस बच्चों को याद प्यार देके चले गए। बाबा ने यहाँ ईशु दादी जी जो इधर ही हैं, और ईशु दादी जी जो योग भी कराए कल, तो ईशु दादी से कहा कि बच्ची आज जितने भी पत्र लिखवाने हो पत्रों के जवाब लिखा दो, कोई पेंडिंग ना रह जाएगा, किसी भी बच्चे को संकल्प ना चले मैंने पहले ईमेल और ये सब तो इंटरनेट वगैरह ये तो था नहीं, तो इसीलिए पत्र बच्चे बाबा को पत्र लिखते थे और बाबा उन पत्रों के राइटिंग में जवाब भी देते थे। तो ईशु दादी ने सारे के सारे पत्र लिखा लिए, पत्रों के जवाब कोई भी पेंडिंग ना रहे, ये बाबा ने जैसा कहा वो हो गया। दूसरा बाबा ने कहा, आप सब ऊपर गए होंगे या जाएंगे देखेंगे, पुराने हैं उन्होंने तो देखा ही है, नक्की लेक के पास हमारा म्यूजियम है ना, तो वो बिल्डिंग उसको लेने की बात चल रही थी कि भाई वहां पर कोई सेवा का स्थान बनाया जाए, प्रदर्शनी आदि उधर की गई थी, और तो कई दिन से पेंडिंग था, लेकिन बाबा ने उस दिन वो भी उसको भी क्लियर कर दिया फाइल को कि उस मकान को ले लिया जाए और जिससे कि वहां पर सेवा का स्थान बन सके, जहां आज म्यूजियम है हमारा इतना बड़ा वहां पर। इस तरीके से जितने भी बचे हुए छोटे मोटे काम रह गए थे वो बाबा ने उस दिन संबंधित व्यक्ति को कह के पूरे किए। शाम हुई तो अक्सर हमारे यहाँ तो रात्रि क्लास रोज 9:45 होता है, बाबा के टाइम से ये चलता आ रहा है, लेकिन उस दिन बाबा ने 6:30 ही संबंधित भाई को बुला के कहा कि सबको इन्फॉर्म कर दो कि आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सब भोजन करके क्लास में आ जाए। तो देखो जितना जब हमारा वो होता है बहुत क्लैरिटी थॉट्स में आ जाती है, विचारों में बहुत एकदम इतना क्लीनलीनेस और क्लैरिफिकेशन हो जाता है। तो बाबा को भी ये आभास था, क्योंकि हमेशा तो क्लास 9 बजे होती है, उस दिन बाबा ने पहले, क्योंकि तब तक तो उसके बाद तक तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया था, तो इसीलिए बाबा ने क्लास पहले कराई, सब भोजन आदि करके जितने भी मधुबन वासी थे और बाहर के कुछ थे तो उन सब भोजन करके 7 बजे आ गए, और फिर बाबा 7 बजे क्लास में आया। ये 18 जनवरी की रात्रि क्लास के समय की बात है। और बस बाबा आए, सब जानते हैं बाबा को ना, भाई उम्र भी थी 93 इयर्स, 93 वर्ष की उम्र थी, बहुत सर्दी का मौसम था तो बाबा को कभी कभी खांसी आती थी, और खांसी में कई बार बहुत ऐसा देखने वाले को लगता था कि जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा जैसे उस पर विजय प्राप्त कर लेते थे। कई बार बाबा कहा करते थे, बाबा के पास ही ट्रांसलाइट की पिक्चर थी श्री कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, तो बस बाबा कहते थे देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है और पुराने तत्वों का अनेक पुराने हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी। और बस ये वर्णन करते करते बाबा की और आंखों में नई चमक आ जाती थी, और कोई खांसी अगर होती थी तो बाबा उसका बताते हुए कि देखो बच्चे अभी तो ये पुराने हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, कल ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, कितना सब आनंद होगा। तो स्वस्थिति के आधार पर बाबा ये खांसी रूपी परिस्थिति को भी जैसे बदल लेता था, और फिर बस बाबा उस स्थिति में स्थित होकर के फिर मुरली चलाते थे साथ साथ, और बस सब जगह खुशी की लहर दौड़ जाती थी। तो बाबा यही चाहता है हम बच्चे भी, और परिस्थितियां तो आएंगी, पेपर्स आएंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो, उसको हम इतना अंदर से शक्तिशाली बना लें कि कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला ना सके। और बाबा का वो प्रत्यक्ष हम देखते थे उस दिन, और उस दिन तो क्या हुआ, 18 जनवरी को बाबा ने जब मुरली चलाई तो एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि हमारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी ना, तो कर्म भोग के ऊपर हमारा जितना भी स्वस्थिति है, जितना योग बल है, योग बल सारे कर्म भोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, और फिर शरीर में का कोई भी बात हमें दुखी या अशांत नहीं करेगा, और बस जैसे अपने आप ही सारे हिसाब किताब चुकते हुए, और बिल्कुल हमें आभास भी नहीं होगा कोई कष्ट का, कोई किसी दुख होगा चाहे, लेकिन हमें आभास उस चीज का कुछ भी नहीं हो। तो उस दिन बाबा का ये भी सारा देखा कि एक बार भी वो नहीं हुआ जो संपूर्णता का लगभग चिन्ह है। और फिर उसके बाद बाबा खड़े हुए हैं, एक हमने और अनुभव किया उस दिन कि हम भी सामने बैठकर मुरली सुन रहे थे हिस्ट्री हॉल में, बाबा मुरली चला रहे थे, तो एकाएक ही हमारे मन में संकल्प आया, जो मन की बात है हा? वो कि बाबा कुछ हमारे लिए बोले, व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात या कोई भी, जिससे कि और हमारे, क्योंकि भगवान को बाबा के रथ को जब देखते थे तो एक अजीब सी शक्ति का सबको संचार होता था, इतना मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी बाबा की, वो तो फिजिकल पर्सनैलिटी लेकिन उसके अंदर डिवाइन पर्सनैलिटी इतनी थी कि बस जिसको भी बाबा दृष्टि देता था वो अशरीरी हो जाता था। हमें याद है कई बार बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा टहल रहे थे होते थे, तो बाबा के सम्मुख बाबा दृष्टि देता था, मिलते थे और बाबा ऐसे हाथ बढ़ा देता था, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, बस जैसे यूं हाथ, और हम लोग बस चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की बाह में चले जाते थे। फिर क्या होता था, उसके बाद जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी अशरीरी हो जाते थे, देहभान से न्यारे हो जाते थे, बिल्कुल भी देव, अभी तो देहभान से न्यारे होने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन बाबा का टच ऐसा होता था, उसमें इतनी शक्ति थी, बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया हुआ था। आप सबने पढ़ा है बाबा की जीवन कहानी में कि बस मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण, ये लिख लिख के स्मृति में बाबा ने पक्का किया होता सब आत्मा है। तो जैसे ही बाबा की दृष्टि हम बच्चों पर पड़ती थी, ये आत्मा है, हम तुरंत ही आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते थे। उसके बाद थोड़ी देर तक उस स्थिति का आनंद लेते थे, पार्टी में सबको मिलना होता था वन बाय वन, फिर बाबा ऐसे सिर पर थोड़ा हल्के प्यार से थपकी देता था, हाँ आओ बच्चे, आओ 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 मीठे बच्चे, आओ, माने फिर से कोई आत्मा जाती नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है, बॉडी कॉन्शियसनेस विड्रॉ हो जाती थी, सोल कॉन्शियसनेस, और बाबा का टच ऐसा होता था। फिर आते थे, बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, नाम पूछता था, आदि आदि, फिर एक जाता था दूसरा आता था, हर एक को ये अनुभव होता था। तो बाद में अंतिम दो तीन वर्षों में, अंतिम दो वर्ष में तो बाबा फिजिकली नहीं मिलते थे ऐसे हाथ से, बस इतना प्यार भरी दृष्टि से ही बच्चों को जैसे उड़ा देते थे, देहभान भूल जाता था। तो हमें भी ये देना देखना है कि हमारी भी दृष्टि और वृत्ति ऐसी शक्तिशाली हो गई है कि हम भी किसी को भी अगर दृष्टि दें तो वो आत्मा जैसे देहभान से न्यारी हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाए। फिर उसके बाद सब जाते थे, मिलते थे। उस दिन 18 जनवरी को हम सामने बैठे हुए मुरली सुन रहे थे, हमारे मन में संकल्प आया बाबा कुछ बोले। अब देखो भगवान, हाँ बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो चुका था, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, तो बस हमारे मन में संकल्प आया बाबा हुआ और बस बाबा तक पहुंचा, और बाबा ने तुरंत ही हमारा नाम लेकर के कुछ महावाक्य उच्चार दिए, जो आज तक भी 18 जनवरी की रात्रि क्लास में मुरली में वो हैं। बस जो भी बाबा हमें बताना चाहता था, देखो ये बच्चा है, मोहन है, बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, आदि आदि 18 जनवरी की रात्रि क्लास में बाबा ने। बात क्या है कि संकल्प हमें आया जो इतना दूर बैठे थे, और जो भक्ति मार्ग में गायन है कि भक्त के मन में कोई संकल्प होता था और भगवान उसको पूरा करता था, भगवान क्या शब्द निकलता था, तथास्तु, भक्ति मार्ग में, और वो संकल्प पूरा हो जाता। अब हम बच्चों को भी ऐसी स्थिति को धारण करना है कि हमारे सामने भी बहुत भक्त आत्माएं आएंगी अंत समय, तो वो खाली हाथ ना जाए। बाबा ने कहा है जो संकल्प लेके आए, अब संकल्प बोलने की तो समय नहीं होगा, हजारों आत्मा आएंगी, एक दृष्टि की प्यासी होंगी तब तक, और इसीलिए जैसे ही वो आत्मा आए उनके दृष्टि से हम पढ़ ले इस आत्मा में क्या संकल्प है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तभी तो उसके मुख से निकलेगा हाँ यही है, यही भगवान के सच्चे बच्चे हैं, यही भगवान है, क्योंकि जो उसके मन में इच्छा लेके आई वो आत्मा, उसकी वो इच्छा पूर्ण हो गई। कराने वाला बाबा है, बाबा ने कहा साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है, आज भी बाबा ने बोला ना, द्वापर से लेकर के मैं साक्षात्कार भक्तों को कराता हूँ, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, और अब ज्ञान में आकर के बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो भक्ति मार्ग में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करी बाबा ने, और अब बाबा हम बच्चों के सम्मुख है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो हमें अपने को देखना है, मेरे अंदर कौन सी मनोकामना है। ऐसी मनोकामना हो जिसके अंदर सब आ जाए, कोई स्थूल लौकिक चीजों की ना हो। बस अंत में बाबा इतना ऐसा हमें बनाओ कि मैं अंत में एक चीज में सब चीज आ जाए। बस बाबा मैं माला का मणका बन जाऊं, विजयी रतन संकल्प में बन जाऊं, बाबा ऐसा करो, ये भी नहीं। अंदर हमारे संकल्प हो, बाबा तो संकल्प तक पहुंचता है बाबा को, तो उससे क्या होगा, परिस्थितियां भी अपने आप बदलती जाएंगी, उसके बाद साथ साथ इतनी शक्ति आत्मा में भरती जाएगी कि हम अपने जो भी हमारी मनोकामना है उसकी तरफ हम बढ़ते जाएंगे संपूर्णता की ओर, और हमारी मनोकामना सिद्ध होगी। संकल्प से सिद्धि जो है ये इस समय का ही गायन है। तो बाबा ने उस समय बस करा, और उसके बाद मुरली चला के बाबा बाहर निकले हिस्ट्री हॉल से, और बस बच्चों को देखते हुए बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले थे, और विदा लेता है ये कहते हुए बाबा गए अपने कमरे में। दादी प्रकाशमणि जी भी साथ थे, तो बाबा के हाथ में हाथ दादी जी का नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी दी। लेकिन उसके बाद जो देखा प्रकृति जीत का, ये सब तो बाबा के पुरुषार्थ का, मन का जीतने का, बच्चों का संबंध का, उसकी बात है। लेकिन बाद में क्या देखा, बाबा जब शरीर छोड़ा तो 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का दिन 19 की रात, 20 का दिन 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ, कुछ भी काला नहीं पड़ा, वो कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया गया था, कोई दुर्गंध नहीं आई, कोई नहीं, वैसा ही लगता था जैसे बाबा अभी खड़ा इकट्ठा होके फिर से बच्चों को कहेगा, आओ बच्चे, मीठे बच्चे। और बस शरीर हाँ, जब बाबा को स्नान आदि भी कराया गया, अंतिम स्नान अग्नि संस्कार से पहले, तो भी बाबा के शरीर में काफी हद तक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं तो आत्मा के जाने के बाद बिल्कुल स्टिफ हो जाए, स्टिफ तो हुआ लेकिन काफी हद तक बड़े, जो इस बात का प्रतीक है बाबा ने इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर को में भी ना कैसे इतना 5 तत्वों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। तो हम सब भी चाहते हैं कि हम भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। बाबा विदा लेके गए, छुट्टी लेके गए, उसके बाद बाबा ने शरीर छोड़ा, तो अब हम कैसे छोड़े। तो ये जो 5 तत्व है ना, ये 5 तत्व हमें अंत तक साथ देते रहे। इन तत्वों की विकराल रूप के कारण हम शरीर ना छोड़े। हमें मालूम है भारत में तो बाबा ने बताया है अक्सर ये 5 तत्व अति हलचल में आएंगे, लेकिन इस अति हलचल में हमारी स्थिति जितनी अति अचल होगी तो हम इन तत्वों पर विजय प्राप्त करके अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। तो देखो कैसे अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं, इन तत्वों को हम अपना मित्र बना लें। मित्र मित्र की हमेशा सहयोग करता है, रक्षा करता है, तो प्रकृति जीत अगर हमें बनना है तो इन 5 तत्वों को हम अपना मित्र बना लें। कैसे मित्र बनाएंगे, मित्रता किनके बीच में होती है, मित्रता होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं उनके बीच में अधिक मित्रता होती है। तो इसीलिए तत्वों के जो संस्कार हैं, गुण हैं, हम भी वैसे गुण धारण करते चले, ये देखना है। मानो जल तत्व है, बाबा ने भारत में बताया अभी भी कहीं कहीं अति जल हो जाता है, कहीं सुनामी होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, पानी में सब बह जाते हैं, तो जल में हाँ बहुत गुण है, लेकिन कुछ गुण का वर्णन यहाँ करते चलेंगे समय के साथ साथ। तो जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? शीतलता, वो तो है, लेकिन साथ साथ जल का सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का। अभी जल जो है इसमें लिया है, इसमें एडजस्ट हो गया गिलास में, कटोरी में लो कटोरी में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो थाली में लो, इतना फ्लेक्सिबल है, एडजस्टमेंट की शक्ति है जल के अंदर। तो अगर हमने भी एडजस्टमेंट की शक्ति धारण की होगी अपने अंदर, हर व्यक्ति के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। ये न कहें कि इनके साथ तो एडजस्ट होना बहुत सहज है, उसके साथ बहुत कठिन है, उसके साथ मैं एडजस्ट होके नहीं चल सकती, नहीं चल सकता। नहीं, हर व्यक्ति के साथ हम अगर एडजस्ट होके चलना सीख जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमने जल का गुण धारण कर लिया तो ये जल अंत में हमारे दुख का, अशांति का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। चाहे जितनी बड़ी भी सुनामी आने वाली होगी, बरसात होने वाली होगी, बहुत पानी आएगा, फ्लड, सब कुछ होने, लेकिन समय से पहले बाबा ये तत्व हमें जैसे ये चेतावनी दे देंगे, जितने क्लीन और क्लियर बुद्धि होगी तो तुरंत ही हमें टचिंग हो जाएगी। और बाबा ने कहा बच्चों के पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। बाबा बंधा हुआ है बच्चों की रक्षा के लिए, बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, लेकिन किन बच्चों की रक्षा के लिए? जो क्या बुद्धि क्लीन क्लियर होगी और बस ये एक ही संकल्प में होंगे तो उन्हें टचिंग, राइट टचिंग एट राइट टाइम होगी। और जल का क्या गुण है? एडजस्टमेंट का गुण है, तो जीवन में एक हम एडजस्टमेंट का गुण धारण करें। दूसरा, जल में शीतलता होती है, जल को अग्नि पर भी रख दो उबल जाता है, लेकिन उतार के रख दो अग्नि से, थोड़े समय के बाद अपने ओरिजिनल गुण में आ जाएगा। तो इसी तरह मानो कभी किसी विकार के कारण, क्रोध के कारण हम मानो एकदम बॉइल होने लगते हैं, लेकिन तुरंत ही ये पहचान कर, जान कर कि ये मेरा संस्कार नहीं है, उस परिस्थिति से हम अपने को थोड़ा डिटैच कर लेते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी स्वस्थिति में आ जाते हैं, जैसे पानी अपना ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है। और फिर जैसे कि ये जल का हमने शीतलता का गुण धारण कर लिया, जल में संस्कार होता है आगे बढ़ने का, उसके सामने पत्थर भी बहुत बड़ा आ जाएगा बह रहा है, तो वो पत्थर के उठने का इंतजार नहीं करेगा टूटने का, इधर उधर घूम घाम के रास्ता बना के वो तो आगे बढ़ जाएगा। ऐसी हमारे सामने भी जब भी कोई पेपर आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, रूपी पहाड़ रूपी वो हो, लेकिन हम उसके खत्म होने का इंतजार न करें, बल्कि अपने जो एडजस्टमेंट की शक्ति है, फ्लो है, उससे हम आगे बढ़ते चले तो जैसे परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इस तरीके से कई जल के जो गुण हैं, जल देखो सुबह सुबह रिफ्रेश कर देता है, और बस ऐसे हमारी भी स्थिति, अभी भी हम दादियों के सम्मुख जाते हैं, बस कितना शांति का, शक्ति का एहसास होता है, वाइब्रेशन ऐसे होते हैं, दादियों का ऑरा ऐसा होता है जो हमें भी शक्तियों से भर देता है। इस तरह ये जल के गुण धारण कर ले तो कभी भी जल के कारण हमारी मृत्यु नहीं होगी। इसी तरह पृथ्वी का बाबा ने बताया, भारत में तो अर्थक्वेक के कारण बहुत ज्यादा विनाश होगा, भूचाल के कारण। तो धरती का, पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? कौन सा है पृथ्वी का? पृथ्वी का गुण है दातापन का। धरती हमेशा देती है। देखो धरती में एक बीज डालो, पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। धरती के में और क्या गुण होता है? बस पानी देती है, पेट्रोल है, फल है, पेड़ जितने भी हैं, सब्जी फल क्या नहीं देती, जीवन से संबंधित सभी चीजें धरती दाता है। धरती ऐसे ही हम भी अगर धरती की तरह दातापन का गुण धारण कर लेंगे तो क्या होगा? दातापन का अगर गुण धारण कर लिया तो हमारे सम्मुख जो भी आए, कोई फिजिकली कोई ऐसी चीज नहीं देनी है, वो तो हर एक की अपनी अपनी पोजीशन परिस्थिति के हिसाब से वो दे सकता है, लेकिन जिन चीजों में कुछ खर्च नहीं होता, स्नेह है, सहयोग है, सद्भावना है, प्रेम है, शांति के, कोई भी हमारे सम्मुख आए ये चीजों का ऐसा हम दान दे सके सहयोग का कि बस वो आत्मा भरपूर होके चली जाए। तो जितना जितना ये हम दान कर, लक्ष्य ये रखना है कि कोई भी आत्मा मेरे सम्मुख आए खाली हाथ ना जाए, फिजिकली कोई भौतिक रीति से नहीं, कोई ना कोई हम मानसिक रूप से उसे इतना तृप्त कर दे, लेकर के जाएगी तो क्या होगा कि धरती में चाहे जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, भूचाल होगा सब, लेकिन ये हमारे विनाश का कारण नहीं बन सकते। तो एक ये देखना है। इसी तरह वायु में कौन सा गुण होता है? वायु में हल्केपन का। धरती हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर ले जाती है। तो अगर हम में हल्के रहने का गुण हो गया, कोई भी पेपर आए, प्रॉब्लम आए, समस्या आए, लेकिन उसके कारण हम भारी ना हो, बस जीवन में अगर हल्के रहने का गुण आ गया, उस हल्केपन के कारण जीवन में सदा खुशी भी रहेगी, आनंद रहेगा, भारी नहीं होंगे, हमारा व्यवहार सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा, तो क्या होगा, वायु के कारण जितने भी साइक्लोन आएंगे, बवंडर आते हैं, कई बार बहुत तेज हवा चलती है, विनाश का कारण बनती है, तो वो चाहे जितना भी होगा, लेकिन वो हमने चूंकि वायु का हल्केपन का गुण धारण किया हुआ है, तो कभी भी वो वायु हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। इस रीति से आकाश का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? विशालता। जितनी हमारे हृदय में भी विशालता अगर होगी, तो वो विशालता के कारण क्या होगा, किसी की भी कोई कमी कमजोरी, उस बात को हम अपने अंदर नहीं रहने देंगे, रखेंगे, बल्कि देखते हुए भी उसे क्षमा कर देंगे। क्षमा का गुण, जितनी भी महान आत्माएं होके गई हैं, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, मदर टेरेसा है, हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, दादी प्रकाशमणि जी के साथ रहे उनके देखा, अभी वर्तमान में भी दादी जानकी जी आदि, देखते हैं कितना बड़ा इनमें क्षमा का गुण है। बहुत अनेक कमियां भी होंगी, कई बात होंगी, लेकिन इनके मुंह से सदा क्षमा की बात रहेगा। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, कायर। तो हमें देखें अपने अंदर, क्या मैं कायर हूं? क्या किसी की कमी कमजोरी अभी तक भी मुझे अंदर भेदती रहती है? वो नहीं। अगर मैं महावीर हूं तो किसी की भी कोई कमी कमजोरी न रहे, नहीं तो अंत में वो ही याद आएगा, वहां प्राण अटक जाएंगे। तो इस तरह ये आकाश का गुण धारण कर लेंगे तो क्या होगा, आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी रॉकेट बम मिसाइल होंगे, बादल फटना उसका वो होगा, क्लाउड बर्स्ट आदि, लेकिन ये मेरे दुख और अशांति और मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आकाश को मैंने अपना मित्र बना लिया, और आकाश क्या ये गुण धारण कर लिया तो आकाश समय पर मेरी रक्षा करेगा, उसका गुण, क्योंकि हमने उससे मित्रता कर ली। इसी तरह पांचवा अंतिम तत्व है सूर्य, अग्नि। अग्नि का प्रतीक क्या है? सूर्य है। तो अग्नि में कौन सा गुण विशेष होता है? अग्नि में कोई भी चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा, आपका भी ऐसा ज्वालामुखी अग्नि स्वरूप हो, ऐसी योग अग्नि हो, आपके सम्मुख कोई भी आत्मा आए उसका रूप बदल जाए। बाबा कहते हैं, रोती हुई आत्मा आए आपके सम्मुख, आपका स्वरूप देख के हंसती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आए आपके सम्मुख, आते ही स्वरूप बदल जाए, शांति के सागर में लहराती हुई वो चली जाए। तो ये तब होगा जब अग्नि का गुण हमने धारण करा का स्वरूप। तो ये बाबा ने जो बताया इन तत्वों के को अगर हम अपना मित्र बना लेते हैं तो ब्रह्मा बाबा का भी यही देखा, बाबा में ये सारे गुण एक एक छलकते थे, देखने में प्रत्यक्ष आते थे। इस कारण से बाबा ने जब शरीर भी छोड़ा और उसके 65 घंटे बाद भी बाबा के शरीर ये 5 तत्वों ने कैसे बाबा को पूरा का पूरा सहयोग दिया, ना कोई दुर्गंध ना कोई उसके अंदर डिसइंटीग्रेशन, और उनका संस्कार किया गया। तो अंत समय में अगर हम भी ये चाहते हैं हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, तो जो जो एक एक तत्व के गुण हैं वो गुणों को अगर हम धारण करते जाएंगे तो जैसे हमने उन तत्वों से मित्रता कर ली तो मित्र कभी भी मित्र के प्राण नहीं लेता, उसकी समय पर रक्षा करता है। तो ये मित्रता हमें अंत समय तक बहुत बहुत काम में आएगी और हम अंत मते सोगति करते हुए विजय को प्राप्त करते हुए ब्रह्मा बाबा के समान विजय माला का मणका बन जाएंगे, जो हम सबकी ही अंतिम इच्छा है। ओम शांति, ओम शांति।